ओम शांति। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुरली कैसे सुनना चाहिए। कौन बताएगा मुरली कैसे सुनना चाहिए, किस स्थिति में बताएगा कोई? जी आत्मिक स्थिति में और एकाग्रता से और स्टूडेंट बनकर सुनना चाहिए। और कोई बाबा ने क्या बताया है मुरली सुनने के लिए मालूम है? बाबा ने भी बताया है मुरली सुनने की विधि, है ना। मुरली कैसे सुने इसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बताया हुआ है, याद है किसी को? तो बाबा ने बताया हुआ है कि मुरली कैसे सुने। जब हम मुरली सुने तो उसके साथ ही साथ क्या करें, अनुभव करते जाएं, या क्या करें, रियलाइज, है ना, रियलाइज करते जाएं। साथ ही साथ मुरली सुना और अनुभव किया, रियलाइज। रियलाइज मीन्स क्या हुआ, रियल आई, है ना, असली आंखों से देखना, रियलाइज ऐसा हो गया ना, रियल और आइज, है ना। तो आजकल भी आप देखेंगे दुनिया में कोई भी ना, जैसे मोबाइल यहां रखेंगे, है ना, और ढूंढेंगे कहीं और, है ना, कोई चीज कहीं भी रखेंगे और ढूंढते कहीं और, है ना, कहीं भी रखे और कहीं भी भूल जाते। क्यों क्यों भूल जाते हैं आजकल, क्यों भूलने लगे? तो इसकी बहुत सहज टेक्निक है। कहते हैं कि जब कोई भी चीज को आप रखो ना, ऐसे कोई भी चीज को रख रहे हैं तो क्या करो, एक बार उसको एक बार हम देखें। जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज रख रहे हैं, कोई बुक है या मोबाइल है, अगर आप यहां रख रहे हैं रैक में, तो इसको रखते समय ऐसे देखिए एक बार हम कहां रख रहे हैं कोई, तो क्या होगा इससे, अगर आपको बाय द वे भूल भी गया ना मैंने कहां रखा, तो आपने जो देखा है ना इसे रखते हुए वो याद आ जाएगा आपको, हाँ मैं वहां रख रहा था, देखा है तो। और आपने देखा नहीं, केवल ऐसे रख दिया ना कि यहीं तो रखना ना, ऐसे रख दिया, फिर ये भूलेगा ना तो फिर याद नहीं आएगा। तो इसलिए हमें आदत डालनी है कि लौकिक में भी कोई वस्तु कोई चीज जब रखते हैं तो क्या करें। एक छोटे बच्चे को भी कहते हैं ना, कोई छोटी सी भी चीज लेके जा रहा है या रख रहा है तो क्या कहेंगे, ध्यान से रखना इसे, ध्यान से रखना। ध्यान से रखना अर्थात देख के रखना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं ग्लास है ऐसे रख दिया। तो ध्यान से रखना अर्थात देखते हुए रखना, है ना। तो भूलते इसीलिए हैं कि हम एक्शन कहीं और है और ध्यान हमारा और है। तो इसीलिए जब हम मुरली भी सुनते हैं तो मुरली को केवल सुने नहीं, लेकिन क्या करें, देखें। जैसे बाबा ने मान लो कहा अमरनाथ, अमरनाथ कहा तो अमरनाथ हमारे सामने दिखाई दे, कहाँ है अमरनाथ, कैसे उसकी पूजा होती है, है ना। बाबा ने कहा सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर के बारे में एक्सप्लेन किया, तो हम उसको भी देखें। तो देखना है उसे, रियलाइज करना, अनुभव करना। तो जब ऐसे देखते रहेंगे ना तो मुरली आपको याद रहेगी, केवल आप शब्द सुनेंगे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने देखा ना जो फील किया ना वो नहीं भूलेगा, वो याद रहेगा। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि जब भी हम मुरली सुने तो ध्यान रखना है कि जो हम सुन रहे हैं इसे हम देख रहे हैं, तो ये अव्यक्त बावधान विधि बताई है कि इसको अनुभव करते जाओ, देखते जाओ। जैसे किसी को कहानी सुनाते हैं, आपने कहा राजा, तो राजा एक शब्द नहीं है, उसको दिखाई देता है ना कैसा राजा कहाँ है। तो कहानी के साथ साथ हम क्या करते हैं, देखते जाते हैं ना, तो फिर वो भूलता नहीं है। तो इसीलिए जब हम मुरली सुने तो उसे क्या करें, देखते जाएं। तो जैसे मान लो बाबा ने कहा, जैसे बाबा कहते हैं कि मैसूर बहुत ही रमणीक प्लेस है ना, रमणीक स्थान है, तो बाबा ने अगर कहा मैसूर तो हम क्या करें, इसको खूब बढ़िया से देखें, है ना, और बाबा आगे के लाइन में चले गए, लेकिन हम रमणीक मैसूर को ही देख रहे हैं। सही विधि है ये भी, बाबा जो बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से देखें ना, क्या करना चाहिए कौन बताएगा। तो बाबा के साथ साथ हमें चलना है, इतना हमारी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसा नहीं कि बाबा ने ये सुनाया हम उसी में चिंतन में रह गए और मुरली आगे चली गई। तो बाबा कहते हैं कि योग की सिद्धि भी यही है कि एक सेकेंड में आपको कहा जाए ना, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो स्थित हो सको, ये है योग की सिद्धि। ऐसा नहीं हम बैठे हैं दो घंटे बीज रूप अवस्था में तो बैठ लेंगे, अभी हम एंजल स्टेज में बैठे हैं एंजेलिक स्टेज में आधा घंटा बैठ लेंगे, लेकिन अचानक आप कुछ सेवा में व्यस्त हैं और अचानक कोई कहे कि एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, ये परीक्षा है, यही पेपर है। लास्ट में बाबा यही कहते हैं ना, एक सेकंड का पेपर होगा, एक सेकंड में किसी ने कहा और आप उस स्थिति में स्थित हो गए, तो ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जब भी बाबा कोई बात सुनाते हैं मुरली में तो हम उसको देखें आंखों के सामने जैसे हम देख रहे हैं। तो जब हम देखेंगे क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी, कई बार थकान होती है तो नींद आ जाती है ना, जैसे बाहर होते हैं दुनिया में, यदि किसी को नींद नहीं आती है तो क्या करते हैं, नींद की गोली लेते हैं ना कई लोग, लेकिन यदि यहां किसी को नींद ना आए तो क्या करें, उसे बिठा के और कहिए मैं मुरली सुनाता हूं, फिर देखिए वो कितनी बार झुटका लेता है। तो मुरली में इतना कमाल है, नहीं नींद आने वाले को भी नींद आ जाएगी। ये तो खैर हंसी की बात है, तो इतना है मुरली में कमाल है। तो इसीलिए जब हम मुरली सुने तो क्या करें, उसे देखते जाएं, उसे फील करते जाएं, अनुभव करते जाएं। तो जैसे बाबा ने आज कहा कि बाबा क्या आए हैं, क्या करने, मनुष्य से देवता बनाने आए। तो वास्तव में देवता कितने हैं कौन बताएगा, बाबा ने बताया है कई बार मुरलियों में, वास्तव में देवताएं कितने हैं। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में देवताएं तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो इनका आकार है ना, आकार इस शरीर केवल लाइट का शरीर इनके पास केवल, और इनका पार्ट, खैर लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, इनका पार्ट है ये केवल सूक्ष्मतन तक ही आते हैं और सूक्ष्मतन से ही वापस चले जाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं। तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कि ये तीन देवताएं, लेकिन जो सतयुगी देवी देवताएं हैं ना, ये क्या है, हैं मनुष्य ही, लेकिन इनके अंदर क्या है, दैवी गुण है, मनुष्य ही है, लेकिन जब आसुरी बुद्धि हो जाती है, आसुरी एक्शन होता है तो क्या कहते हैं, असुर मनुष्य को। वही मनुष्य जब दैवी गुण धारण करते हैं, दैवी धर्म को फॉलो करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, देवता। है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनका क्या करो, दिल से, दिल से क्या करना चाहिए, शुक्रिया, है ना। कोई मान लो किसी को छोटी सी भी गिफ्ट देता है, छोटी सी भी गिफ्ट देता है, तो क्या कहते हैं उनके लिए, थैंक यू, है ना, थैंक्स, आपने क्यों इतना किया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कहीं। तो बाबा तो कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं, स्वर्ग की सौगात कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, 21 जन्म का, है ना। तो कितना ना हमें बाबा को थैंक्स करना चाहिए, है ना। श्रीमत पर क्या करो, चलते रहो, बाबा ने भी कहा, और एक से सच्ची प्रीत रखो। तो इसके लिए भी बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जैसे प्यार करना दुनिया में तो बहुत सहज है, क्योंकि देह में रहते हैं और देहधारी से प्यार करते हैं तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा ने कहा कि यहां जो बाबा से प्यार करना है ना, बहुत कठिन है। बाबा से प्यार करना इतना सहज नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बाबा से प्यार करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए पहले किस में स्थित होना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है अपने को, आत्मा बिंदु, पहला स्टेप ये उठाना है कि हम बिंदु बने। यदि हम बिंदु नहीं बनते हैं और ऐसे ही बाबा को याद करते हैं तो ये जैसे भक्ति मार्ग की बातें हो जाती है। तो पहला स्टेप कि हम अपने को आत्मा समझें, और इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आपकी याद टूटती क्यों है, आपका योग क्यों टूटता है, क्योंकि आप एक बिंदु को देखते हो, एक बिंदु को देखते हैं ना परम धाम में, तो योग टूट जाता है, क्योंकि बिंदु तो बहुत सूक्ष्म है, तो बुद्धि कभी भी खिसक जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप परम धाम में बाबा को याद करते हैं तो दो बिंदु देखो, बैठे हैं अब परम धाम में, दो बिंदु को देख रहे हैं, ठीक है। दो बिंदु कौन कौन, एक कौन है बाबा, दूसरा, दूसरा कौन है, कौन बताएगा, मैं, है ना। तो दो बिंदु जब देख रहे हैं तो एक बाबा और एक मैं, और दोनों जुड़ गए। तो बिंदु बिंदु के साथ जुड़ गई, फिर बाबा कहते हैं आपका कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, बाबा के पास बैठ गए, अब बाबा को जो करना है करेगा। जैसे छोटा बच्चा है अपने माँ के पास चला जाता, मतलब छोटा बच्चा, तो उसकी माँ अब जो करना है ना, उसको स्नान कराना, उसको तैयार कराना, माँ करेगी, बच्चे को केवल क्या करना है, माँ के हैंड ओवर। ऐसे हमें भी क्या करना है, केवल बाबा के पास जाके बैठ जाना है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आपको मेरे पास आकर बैठना भी नहीं आता क्या, बाबा ने कहा आप कुछ बात भी नहीं करो, संकल्प भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, बिंदु बनकर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। तो इसीलिए कहते हैं जो निर्संकल्प स्थिति है ना, निर्संकल्प स्थिति क्या है कि जिसमें अच्छे संकल्प भी नहीं, बुरे संकल्प भी नहीं, सबसे अलग। तो आप इसका देखेंगे कमाल कि अगर आप बिंदु बन करके बिंदु के साथ रहते हैं, आपके और कोई थॉट नहीं है, तो 5 मिनट में आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे, इवन 2 मिनट में भी इतना रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा से प्यार करना इतना सहज नहीं है, है ना। बाबा से प्यार करने के लिए पहले क्या होता, अपने को आत्मा समझना, तो एक से सच्ची प्रीत रखो। और आज बाबा ने कहा कि बाबा को कैसे याद करना चाहिए हमें, आज की मुरली में कहा था बाबा ने जैसे स्त्री किसको याद करती है? अपने पति को। इसका एग्जांपल बताया ना बाबा ने। तो हमें बाबा को ऐसे याद करना है जैसे स्त्री पति को, यानी इतना समर्पण भाव। अच्छा, बाबा से प्रीत है तो उनकी निशानी क्या है? बाबा से अगर सच्ची प्रीत है, सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो क्या करेंगे? एक बाबा को ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, और मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। यदि किसी को दुख देते हैं तो क्या कहते हैं बाबा? बहुत कुछ कहते हैं ना बाबा। अगर दुख देते हैं तो दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे। दूसरी बात है, बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में कि मैं आपको क्यों याद करूं, है ना? क्या कोई मैंने पाप किया है कि आपको याद करूं, कि मेरे विकर्म चुक्त हो? तो बाबा क्या कहते हैं? आप याद करो, क्योंकि पाप तो आपने किया है ना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बाबा ने, तीन चार महीने के अंदर ही बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ऐसे बच्चे जो अनेकों को सुख देते हैं, मैं भी उन्हें याद करता हूं। कहां बाबा कहते हैं मैं किसी को याद नहीं करता, लेकिन किसे याद करता हूं? जो अनेकों को सुख देते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देना है, लेकिन क्या करना है? सुख देना है। तो यदि सुख देते हैं तो फिर आपको ना स्वतः लगेगा जैसे बाबा पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमें इतना हरेक को सुख देना है, दुख तो नहीं देना है। और क्या कहा बाबा ने? घृणा नहीं करना है। यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो बाबा ने क्या कहा है मालूम है? बाबा ने कहा कि यदि किसी से घृणा करते हैं ना तो क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली में नहीं, लेकिन पहले कहा है कई बार बाबा ने कि यदि हम घृणा करेंगे किसी से ना, तो बाबा ने कहा डंडे खाने पड़ेंगे आपको। घृणा, तो इसलिए क्या करना है? हमें हर एक को सुख देना है। अगर योग नहीं भी लगता है ना आपका, तो क्या करें? अनेकों को सुख दें। आप सुख दें फिर देखिए कैसे आपका योग लगता है। लेकिन आपने किसी के दिल को दुखा दिया, किसी को कमेंट बोल दिया, किसी को आप सोचते हैं कि ऐसा बोलें जो ये तड़प जाए, तड़पने पर विवश कर दिया, तो क्या होगा? वो कुछ आपको बोल तो नहीं सकते, लेकिन जो उनके अंदर की जो दुख के कहते हैं ना आह, जो है ना, आप सब कुछ सामने कोई आपसे लड़ ले, झगड़ ले, कुछ बोल दे, वो बात फिर भी इजी है, लेकिन जो किसी की आह निकलती है ना, उससे कोई नहीं बचा सकता किसी को। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी भी एक्टिविटी से किसी को दुख ना पहुंचे। तो हर एक को इतना हम सुख दें, और कुसंग से अपनी क्या करें? संभाल करनी है, है ना? कुसंग से अपनी संभाल करें, है ना? सारा पुरुषार्थ ही इसी में है। इसीलिए क्या कहते हैं? संग तारे कुसंग डुबोए। तो अगर आपका संग अच्छा है तो आप सब कुछ से बच जाते हैं, लेकिन यदि आपने कुसंग कर लिया तो पता भी नहीं चलता, धीरे 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 लगातार गिरावट ही होती जाती है। और बाबा ने कहा आज के मुरली में कि ब्राह्मण बच्चों को क्या होगा? धीरज होगा, धीरज। तो कहते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उसकी पहली निशानी क्या होती है? धीरज, धैर्य होता है। पहली निशानी ब्राह्मण का, चाहे कोई भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, पहला उसका जो गुण है वो धीरज का होगा, धैर्य, घबराएगा नहीं। शरीर भी छूट रहा है ना तो भी घबराएगा नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के पास धीरज होता है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रीत किससे है? किससे है? परमपिता परमात्मा से, एक बाप से। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो स्वतः धीरज मिलता है, धैर्य। धीरज क्यों मिलता है? क्यों मिलता है धीरज? जैसे अर्जुन को दिखाते हैं ना, अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान कि मैं आपके साथ रहूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन देखता भी इतना भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, इतने बड़े 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 शक्तिशाली योद्धा, फिर भी अर्जुन निश्चिंत है। क्यों? उसकी बुद्धि में क्या है कि हमारे साथ कौन है? भगवान है। ये कॉन्शियस, तो ये जब हम फील करते हैं कि हमारे साथ भगवान है ना, तो स्वतः पेशेंस आता है, धीरज आता है। नहीं तो घबराते हैं ना कि अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, इधर तो इतने ज्यादा हैं, हम तो अकेले हैं। लेकिन जब ये देखते हैं ना, कितना भी पेपर है जीवन में, तो इसलिए यदि कितना भी बड़ा पेपर है, लेकिन यदि हमारे कॉन्शियस में है कि हमारे साथ बाबा है, तो स्वतः पेशेंस आ जाता है। पेशेंस अर्थात शांति, अर्थात कोई भी बात होती है तो हम तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा रुकें। ये जो रुकते हैं ना थोड़ा देर, यही पेशेंस है, जो साइलेंस में स्थित हो जाते, थोड़ा रुकें फिर जवाब दें, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप जितना आपकी बाबा से प्रीत होगी ना, तो स्वतः आप में धीरज होगा। इसीलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आप में धीरज है, क्यों? क्योंकि आपके प्रीत किससे है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे अपना पोता मेल, सच्चा सच्चा पोता मेल मुझे दो। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, बाबा ने कहा इसमें डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचो जैसे बाहर दुनिया में है ना, किसी को मान लो चंदा आदि इकट्ठा करते हैं तो देते हैं कि फलाना मंदिर बन रहा है या ये प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, तो क्या डर लगता है लोगों को? हम दे तो रहे हैं लेकिन पता नहीं वहां सही यूज होगा कि नहीं यूज होगा, कहीं लेने वाले तो नहीं खा जाएंगे इसमें आधा। होता भी है ऐसा दुनिया में, लेने वाले भले मंदिर के नाम पर लेते हैं लेकिन अपना भी बना लेते हैं कुछ, मंदिर बाद में, पहले अपना कुछ बन जाता है उसमें। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने कहा दुनिया में ऐसा करते हैं लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना। क्यों? क्यों ऐसा नहीं कर सकता? तो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं तो निराकार हूं ना, मैं कहां धन रखूंगा। देखो भगवान को भी प्रूव करना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि हर एक की बुद्धि में ऐसी बातें भरी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो निराकार हूं ना, है ना, इसलिए मैं तो आपका धन लूंगा नहीं, आपके लिए ही यूज होगा। तो जैसे एग्जाम्पल दिखाया, जैसे बाबा ने बताया कि जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे लिए ऐसे धन, और बाबा ने कहा उस धन से उन्होंने संघर्ष किया और कांग्रेस राज्य स्थापन किया, कांग्रेस का राज्य स्थापन किया। तो उसमें तो कहते हैं ऐसे बाहर दुनिया में कि जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन ले रहे हैं, तो जो उसके लिए समर्पित बुद्धि से कार्य कर रहे हैं तो उसमें से वो अपने लिए यूज कर सकते हैं खाने पीने के लिए थोड़ा, क्योंकि वो और तो कहीं जा नहीं पाएंगे, ऐसा दुनिया कहते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा भी नहीं ना, बाबा कहें कि हमको जीवन यापन करना है इसमें, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मुझे क्या करो, पोता मिल दो अपना। और इसी से जुड़ा हुआ था, नेक्स्ट पेज पर था कि बाबा ने जैसे कहा, जैसे नहीं कहते बाबा ने कहा बच्चों को तो इतना बाबा से प्यार तो है नहीं, जैसे बातें करते हैं ना बाबा, जो बाबा की मुरली है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सीरियसली है ना, जैसे राजू भाई जी नहीं बता रहे थे कि सूरदास और तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया ना, तो बाबा कई बार तो जैसे ऐसे ही बाबा को किसी ने कहा कि हनुमान जो है पांव जमाकर खड़ा हो गया और कहा कोई मेरा पांव उठा सके तो उठा के दिखाए, तो फिर किसी ने कहा बाबा वो हनुमान नहीं, वो तो अंगद था। तो बाबा ने क्या कहा, वही कोई भी हो, हनुमान हो या अंगद, है ना, एग्जाम्पल से मतलब है ना बाबा को। तो बाबा जो कहते हैं ना, जैसे बातचीत कर रहा है बाबा हमसे, है ना, जैसे हम आपस में बात करते हैं, मुरली सेम ऐसी है, बहुत सीरियसली नहीं बाबा। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, ऐसे कई बार दादियों को भी बाबा ने कहा, किसी दादी को कि आपको तो अष्टतन में आना नहीं, आप आ नहीं सकोगे, तो जिस दादी को ऐसे कहा वो अष्टतन में आने वाली दादी थी, उन्होंने अफर्ट किया उस पर, बाबा ने कह दिया, दूसरा कोई क्या कहेगा, अब बाबा ने कह दिया ना तुम नहीं आओगी, तो इसको हिम्मत कहा जाता है कि अगर भगवान भी कह देना आपसे ये नहीं होगा और आप उसके लिए वो करके हम करके दिखाएंगे, ये है हिम्मत। आपको सारी दुनिया कहे आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम करेंगे, तो इतनी हिम्मत। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा से इतना प्यार तो है नहीं, इसीलिए क्या सोचते हैं, भोजन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, जीवन यापन करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, कितना सहज एग्जाम्पल दिया कि जो भील लोग हैं, कितना थोड़े में उनका जीवन चलता है, वो बेचारे थोड़े सोचते हैं कि अब हमारा कैसे जीवन चलेगा, चल रहा है। बाबा ने लाइट वे में कहा कि ये तो कितना सहज है ना, भोजन करना कोई बड़ी कठिन बात है क्या। बाबा ने कहा देखो मंदिरों के आगे कोई सन्यासी होते हैं, हाँ, कफनी पहन लिया उन्होंने, तिलक लगा लिया, क्या हो जाता है, लोग उनको एक तो आते हैं उनको दान भी देते हैं और दूसरा पांव भी छूते हैं। वहीं कोई भिखारी बेचारा बैठा हो ना धूप में, भिक्षा मांग रहा हो बेचारा बैठ के, तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे हाथ पांव नहीं है क्या, कमा के खा नहीं सकते, बेचारा वो धूप में कहां बैठा है नीचे, तो उसको देने में ये हालत होती है। लेकिन जो महात्मा है, ड्रेस पहन लिया सन्यासी का, उसको धन भी देंगे, पैर भी छुएंगे और क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि कितना सहज लाइफ चलती है, तो इसीलिए बाबा ने एग्जांपल दिया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन यापन तो बहुत सहज है, तो इतना फेथ होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि आपको सोचो कि कैसे भोजन हम करेंगे कैसे, तो कोई मान लो बीके नहीं भी है, प्योर आत्मा नहीं है तो उसके हाथ का भी भोजन कर ले। नहीं, हमें इतना ध्यान हो कि हमें पवित्र के हाथ का ही भोजन स्वीकार करना है, क्योंकि हमें पहले बाबा को ऑफर करना है, बाबा को भोजन ऑफर करना है, फिर स्वीकार करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है कि हमको पेट के लिए, जीवन यापन के लिए चाहिए। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि एक तो आप क्या करो, बाबा को याद करो, आज मुरली में कहा ना, तो एक तो बाबा को याद करो और दूसरा किसको याद करो, दो बातों को बाबा ने कहा, एक तो बाबा को याद करो और दूसरा किसको याद करो, स्वदर्शन चक्र है ना, एक तो बाबा को याद करो दूसरा स्वदर्शन चक्र को याद करो। बाबा को याद करना अर्थात, बाबा को याद करना अर्थात कैसे याद करते हैं, परमधाम में भी याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी अगर रूहानी करना है तो याद करते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा स्वदर्शन चक्र, तो स्वदर्शन चक्र को याद करो अर्थात स्वदर्शन चक्र को कैसे याद करते हैं, तो स्वदर्शन चक्र और बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं जैसे आप अभी आपको बैठ करके याद करने को टाइम मिला, एक सेमी याद है, जैसे आप चलते फिरते बाबा को याद कर रहे हैं ना, वो सेमी याद है, कंप्लीट याद नहीं कहेंगे। कंप्लीट याद याद क्या है, जहां आप देह से बिल्कुल परे हो गए, जब बैठने को आपको मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आपको बैठने को मिलता है, ऑफिशियल बैठ के योग करने को मिलता है, तो बाबा कहते हैं कि नॉर्मल योग नहीं करो, सिंपल योग तो आप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन जब बैठने को मिलता है तो पावरफुल स्टेज परमधाम में स्थित हो गए बाबा के साथ। तो ऐसी याद भी कम से कम हमें 4 घंटे रखनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में तो यहां तक कहा है कि अगर किसी का 2.5 घंटा से कम बीज रूप अवस्था है, 2.5 घंटा से कम बीज रूप अवस्था है, तो उसका संस्कार कभी परमानेंट चेंज नहीं होगा। आपको लगेगा चेंज हो गया है, हमारा क्रोध खत्म हो गया है, लेकिन टाइम पर फिर क्रोध आ जाएगा। तो इसीलिए 2.5 घंटा कम से कम बीज रूप अवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि एक तो बाप को याद करो, दूसरा क्या करो, स्वदर्शन चक्र याद। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात कि जब बैठ कर याद करने को बाबा को मिलता है तो बैठ के याद करें, लेकिन स्वदर्शन चक्र चलते फिरते भी हम काम काज करते हुए भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या है स्वदर्शन चक्र में, स्वदर्शन चक्र अर्थात अपने जो आप 5 स्वरूप को भी देखते हैं ना, ये भी स्वदर्शन चक्र का ही अंश है ना। जैसे मान लीजिए कैसे स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं, केवल ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल हम वर्णन करें, लेकिन उसको फील करना, जो बाबा कहते हैं ना कि आप रियलाइज करो उसको। जैसे मान लो आप सतयुगी देवी देवता समझते हैं, है ना, तो आप देखो कहीं ड्रामा आदि हो रहा है, कहीं नाटक हो रहा है, है ना। तो जैसे मान लो कहीं रामलीला भी हो रही है, तो उसमें जो राम बना है उसको आप बोलो उसका नाम मोहन है, उसको बोलेंगे मोहन तो बोलेगा, वो कहेगा अगर हम अभी बोल देंगे तो सारी रामलीला हमारी खराब हो जाएगी, उस समय तो नहीं बोलेगा ना। तो उसको क्या कॉन्शियस है, देखिए थोड़ी देर के लिए बना है राम, लेकिन उसकी कॉन्शियस क्या है, राम बन के बैठा है, राम के स्वरूप में है, ये जो स्वरूप है ना उस भान में, कॉन्शियस में। तो यही करना है, यही बाबा कहते हैं आपको क्या करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था और डायमंड हॉल में ही याद है हमको कि बाबा ने कराया भी था, इसी में बाबा ने कहा 10 मिनट इसको रोज दिन में बार बार करो। जैसे मान लो आप ऐसा फील करो कि मेरा लाइट का बॉडी है, लाइट का ड्रेस है, ये लाइट का क्राउन है, इसको फील कर रहे। और यहां तक बाबा ने कहा कि बाबा ने फिर वो डायमंड का एक पाउडर बनाया और छिड़क दिया, तो बाबा ने लिखा कि सभी देश में जाकर जगह जगह चिपक जाता उसका दाना और वो सब क्या हो रहा है, चमक रहा है इसे। तो बाबा ने कहा कि इसी स्वरूप में आप बैठ जाओ, आप फील करो कि ये ड्रेस हमने पहन लिया है, फरिश्ता ड्रेस, फरिश्ता का क्राउन, और आप इसको फील करो कि चमक रहा है। तो कभी आपको योग मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आप कुछ नहीं करो, बस यही लाइट देखो। तो 10 मिनट, 10-10 मिनट बार बार करो इसको। ऐसे जैसे आप सतयुग में चले जाते, मान लीजिए देवी देवता है, सतयुगी देवी देवता, तो उसको फील करिए, वहां का क्राउन, वहां का रंग बिरंगा ड्रेस, और देख रहे हैं कैसे मेरा ड्रेस चमक रहा है, कैसे मेरा क्राउन चमक रहा है, इसको कल फील करना, आपको कुछ ये नहीं करना। इसमें आप देखो कितना लाइट हो जाते हैं, कितना हल्के हो जाते हैं। ऐसे आपका पूज्य स्वरूप है, पूज्य स्वरूप में भी मान लीजिए मैं माँ दुर्गा हूं, तो दुर्गा हूं तो कैसे है? फिर अपना वही देखें, क्राउन, अपने ड्रेस को देखें कैसे चमक रहा है, उस स्वरूप में स्थित हो जाए बस। तो अगर 5 मिनट भी आप स्थित हो गए ना जहां पर उस स्वरूप में, तो कोई भी आएगा ना उसको भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, वो वाइब्रेशंस काम करेंगे वहां। तो ये है जो बाबा ने कहा ना कि एक तो बाप को याद करो, दूसरा स्वदर्शन चक्र फिरा। स्वदर्शन चक्र फिराना मीन्स यही एक स्वरूप में स्थित हो जाना, पांचों स्वरूप में से एक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये है स्वदर्शन चक्र फिराना। तो ये दो चीज को हमेशा ध्यान रखें कि या तो हम बाबा को याद करें, और यदि हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम स्वदर्शन चक्र फिराएं। तो बाबा ने कहा कि बाबा की याद से बहुत तेजी से पाप खत्म होते हैं। अगर आप बीज रूप अवस्था में हैं या ज्वालामुखी स्थिति में, तो बहुत तेज पाप खत्म होते हैं। लेकिन स्वदर्शन चक्र क्या है, चलते फिरते भी कर सकते हैं, फिरा सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें भी दो फायदा है स्वदर्शन चक्र में, कि जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं ना, जब हम इस स्थिति में स्थित होते हैं, तो एक तो ये होता है कि हम पाप कर्मों से बच जाते हैं, और दूसरा पाप खत्म होते हैं। हाँ, उसकी रफ्तार थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे खत्म होते, लेकिन हम पाप से तो बचे, और थोड़ा भी सही पाप खत्म तो हुआ। बाकी जो हमको बैठ के मिलता है याद करने को, उसमें हम पावरफुल बाबा को याद करें। तो इतना ध्यान रखें ऐसे पांचों स्वरूप का, या आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर फरिश्ता बनकर बैठना लगता वैसे में बैठो, तो दिन में बार बार इसमें बैठना है। फिर बाबा ने कहा आज के वरदान में कि सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले क्या बनो, सिद्धि स्वरूप, है ना। तो बाबा ने कहा कि जो आज कर्मों की गुह्य गति है ना, कर्मों की गुह्य गति में हम सोचते हैं ना, हम तो सब कुछ जान चुके हैं, हमें सब मालूम है, तो कर्मों की गुह्य गति में हम थोड़े हल्के हो गए, थोड़े लाइट हो गए। तो बाबा ने कहा इसके कारण हमें पता नहीं चलता है, छोटे छोटे बहुत पाप हो जाते हैं, लेकिन छोटा छोटा पाप ही बहुत पाप होके क्या हो जाता है, हमें बहुत भारी कर देता है। पाप और पुण्य, ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा कि हम पाप हमसे हो रहा है, और कैसे पता चलेगा कि हमसे पुण्य हो रहा है, मालूम है। जब आपको चलते चलते ना अचानक अनजाने भी आपको भारी पल लगे ना, जैसे एक स्ट्रेस लगे या भारी, अर्थात कोई पाप कर्म हो रहा है, कोई है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, जिसको आपके लिए दुआएं नहीं है, किसी के आपके लिए बद दुआएं निकल रही है, तो वो हमें भारी कर देती है, या हमने पहले भी दिया है किसी को सालों पहले, तो उसका अब वाइब्रेशन हमारे ऊपर आ रहा है तो वो भी हमें भारी कर देता है। तो ये जब पाप है ये क्या कर देता है, भारी, और पुण्य क्या कर देता है, हल्का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, आप किसी को बहुत अच्छे बोल बोलते हो ना, मधुर बोल बोलते हैं, किसी को रिस्पेक्ट वाले बोल बोलते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, आत्मा को खुशी मिल जाती है, हल्की हो जाती है ना। तो वो जो हल्की होती है आत्मा ना, उसकी दुआएं आपको मिलती है, और जब दुआएं आपको मिलती है ना, तो बाबा को याद करना बहुत सहज होता है। आप चाहो किसी को दुख दे और याद अलग चीज है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप यदि किसी को दुख देते हैं तो बाबा को याद भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए यदि हम बाबा को याद करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना कि हम किसी को दुख ना दें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्मों की गुह गति को समझना है। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा ना कि किसी के बारे में अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की कमी के बारे में हम वर्णन करते हैं, तो क्या कहा आज बाबा ने, क्या कहा, एक बहुत अच्छा लाइन बताया, इसको हमेशा याद रख सकते हैं, कि बाबा ने कहा कर्मों की फिलॉसफी क्या है, कर्मों की फिलॉसफी कि यदि हम किसी की ग्लानी करेंगे ना, तो बाबा ने कहा वह जो है जिसकी आप कर रहे ना, वो आपके दुगुना आपकी ग्लानी करेगा। ये कर्मों की फिलॉसफी बताया बाबा ने, और बाबा ने यहां तक कहा कि यदि आप किसी की ग्लानी तो नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई कर रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि इसको खराब ना लगे बेचारा ना, ये बोल रहा है तो हाँ हाँ मैं कर, तो हाँ कोई बात नहीं, हम तो हाँ ही कर रहे हैं ना, कल वर्णन तो नहीं कर रहे उसका। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, भले कोई ग्लानी कर रहा है, लेकिन यदि आपने हाँ हाँ जी हाँ जी उसमें किया ना, तो उसमें भी आपके पाप बन जाते हैं। तो इसीलिए इतना हमें सावधानी चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्मों की गुह गति को हम समझें। कर्मों की गुह गति अर्थात हम किसी के बारे में, किसी के कमी के बारे में वर्णन ना करें, न किसी का हाजी करें, नहीं। तो बाबा ने कहा कि इनसे अगर हम मुक्त बनते हैं तो इसी से क्या होगा, हमारी संपूर्ण स्थिति होगी, और इसी से हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, है ना। और बाबा ने क्या कहा कि आदि पिता, आदि पिता अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए क्या करें, शक्ति शांति और सर्वगुणों के क्या बने, स्तंभ बने। तो इतना हमें ध्यान, ठीक है, ओम शांति।